ओम शांति। आज बहुत सुंदर ये इंटरव्यू सेशन रहेगा। मैं सबसे पहले बहुत दिल से रामनाथ भाई और डॉक्टर सचिन और रोहित भाई का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। खास रामनाथ भाई नीचे से आप लोगों के लिए समय लेके आए हैं और डॉक्टर सचिन भाई अपने ड्यूटी छोड़ करके आपके लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। और इन दोनों के बारे में रोहित भाई और सुनाएंगे और बहुत सुंदर, आपके भी तरफ से कोई प्रश्न हो आप बता सकते हैं और उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमें मदद मिलती हैं। और रोहित भाई हमारे रूचि डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं, आप ज्ञान सरोवर के शुरुआत से समर्पित हैं। यहाँ पे हम इन तीनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द थ्री ऑफ यू। रोहित भाई।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के इस सुंदर सत्र में प्राणेश्वर बाप दादा की उपस्थिति का हम सब अनुभव करेंगे। और जैसे कि मंजू दीदी ने इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे हमारे आज मध्य दो विशेष महारथी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप दोनों बाबा की विशेष रत्न है। और मैं समझता हूँ सभी भाई बहनें बाबा की बच्ची सब परिचित ही हैं। और जैसे कि आज का जो ये क्वेश्चन आंसर का जो सत्र है, इसका जो शीर्षक है, हेडिंग है, लास्ट सो फास्ट, इसके ऊपर हम आज के इस सत्र में दोनों भाइयों से, भाई जी लोगों से कुछ बातों का अच्छी तरह से विश्लेषण चाहेंगे। आप दोनों अनुभवी हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं, समझते हैं कि जब हम किसी अनुभवी से सुनते हैं तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। हम सबके मध्य परम आदरणीय रामनाथ भाई जी, आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। रामनाथ भाई जी को आप सब टीवी में देखते रहते हैं और आप 1972 से ईश्वरीय ज्ञान में आए। आप मूलतः कर्नाटक से जुड़े और उसके बाद फिर बाबा के यज्ञ में 78 से आप मधुबन हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। भाई जी का बचपन से एक तलाश थी कि भगवान कौन है, कहाँ रहता होगा, और इसी तलाश में आप बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाती है। बाबा के यज्ञ में आप आ गए, दादियों की पालना में पल रहे हैं, अनेक बार बाप दादा से सन्मुख मिलन मनाए हैं, भारत में और विदेशों में भी आप अनेक स्थानों पर योग भट्टी के कार्यक्रम में जाते रहते हैं। आप यहाँ पर जो हमारे अलग अलग विंग बने हुए हैं उसमें आप धार्मिक विंग के सफल संचालन करते हैं। आप सब भाई बहनों के तरफ से इस सुंदर कार्यक्रम में परम आदरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। आज हमारे मध्य डॉक्टर सचिन भाई, जो हमारे इस यज्ञ में बाबा के परिवार में बहुत ही ऊंची उड़ान के साथ अपना परिचय सबके मध्य बना रखे हैं। जब भी कोई भाई बहन यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर सचिन को ज़रूर याद करते हैं, और मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों बाद ज्ञान सरोवर में आपका आना हुआ। आप सब भाग्यशाली हैं जो आपके भट्टी में आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं। डॉक्टर सचिन भाई जी, आप भी महाराष्ट्र से हैं और बाल्यकाल से आपको बहुत तलाश थी, ईश्वर की तलाश, भगवान की तलाश, और इसी तलाश में आप छोटेपन में ही बहुत सारे साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, हमारे धर्मशास्त्रों का आपने अध्ययन किया। 2003 में आप पहली बार शांतिवन आए और आपको एक विलक्षण अनुभव हुआ और आप सदा के लिए बाबा घर में रह रहे हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी दोनों प्रकार की सेवाएं देते हैं, आप डबल डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर। आपकी अनेक क्लासेस आजकल हमारे बाबा के बच्चे सुनते रहते हैं जब परिचित हैं, और आप हमारा जो आज का विषय है लास्ट सो फास्ट, उसके आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बहुत कम समय में ही आपने ईश्वरीय ज्ञान को, यहाँ के बताए हुए योग को अपने जीवन में अपनाए और प्रैक्टिकल अपने जीवन के माध्यम से अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अभी जब आप आ रहे थे तो रामनाथ भाई जी ऐसी हंसी में कह रहे थे कि एक सचिन तो बहुत फेमस है ना भारत में तो ये संयोग ही है कि सचिन नाम के लोग बहुत प्रसिद्ध हो रहते हैं। तो कह रहे थे कि आप ऐसा लग रहा है जैसे खिलाड़ी बन करके आ रहे हैं तो वास्तव में हम सब इस दुनिया रूपी मैदान में खिलाड़ी ही हैं, और उसे जो क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दुनिया में, भारत रत्न से नवाजा गया है, और हमारे डॉक्टर सचिन भाई जो इस समय हमारी विद्यालय की बहुत बड़ी शोभा है। आपने भी लगभग पुरानी दादियों की पालना में पले हैं, बाप दादा से अनेक बार मिले हैं, अपने पुरुषार्थ के प्रति बहुत सजग रहते हैं। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम में डॉक्टर सचिन भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसे कि आज का ये सुंदर विषय है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, तो इस विषय के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और दोनों के अनुभव से जानेंगे कि कैसे हम सब लास्ट में भी फास्ट कैसे जा सकते हैं। क्योंकि प्रायः सभी ब्राह्मणों के मन में ये रहता है कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं कैसे उन्नति करूं, और कई बार मन में अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं, समस्याएं रहती है, कुछ पेपर होते हैं। तो आप दोनों अपने अनुभव से हम सबके सामने प्रकट करेंगे, बताएंगे बाबा के महावाक्यों के माध्यम से भी, अपने अनुभव के माध्यम से भी, कि कैसे हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आदरणीय रामनाथ भाई जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई जी, जैसे ये शब्द है लास्ट सो फास्ट, हम सभी ब्रह्मावत्स अनेक बार अव्यक्त मुरलियों में ये सुने हैं शब्द। साकार मुरली में तो हम कम सुनते हैं, ज़्यादा से ये शब्द नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर अव्यक्त वाणियों में ये शब्द आता है। मैं थोड़ा आपसे इसके ऊपर प्रकाश चाहता हूँ भाई जी, कि इस शब्द का वास्तविक भाव क्या है, हम क्या समझें इस शब्द का अर्थ, लास्ट सो फास्ट। रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा शब्द है। मनुष्य का एक नेचर है, वो सब कुछ तुरंत चाहता है, क्विक चाहता है। इसलिए साइंस ने भी हाइब्रिड किया है, थोड़े से समय के अंदर बहुत कुछ उत्पत्ति चाहिए, प्राप्ति चाहिए। तो ये ह्यूमन एटीट्यूड है, नेचर है, इच्छा है, लेकिन वो अपने आप नहीं होगा, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो यहाँ बाबा ने भी बहुत अच्छे बताया, बच्चे लास्ट में भी आए तो भी आपके लिए पूरा चांस है, आप 108 की माला में जो चाहते हो तो ऊंचे ऊंच जो पद है वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए नहीं, दो चीज किया तो बस। एक, रोज जो ज्ञान चाहिए, रोज बाबा मुरली सुनाता है, सारी मुरलियों से कोई भी एक शब्द अगर सवेरे से शाम तक आपके बुद्धि में जागृत है, स्मृति में है, याद है, और बार बार औरों को सवेरे से शाम तक दूसरों को भी बताते हो, माना ज्ञान आचरण में ला रहे हो, बता रहे मीन्स आपको रियलाइज होता है कि मैंने इनको बताया, मुझे भी करना चाहिए। एक कोई भी शब्द ले लो, ये एक काम जरूर चाहिए, तो वो लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकता है। क्यों? कि ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। गति सदगति कर्मों के अंदर, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तो कर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कल क्या करते थे और आज क्या करना चाहिए, तो उससे मेरा पद्मों की कमाई जमा हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए। अगर और उसके साथ आधा घंटा कम से कम सवेरे और शाम को दो टाइम करते हो, नंबर वन, नंबर टू कम से कम एक टाइम, आधा घंटा, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक ही राज योग है और रोज मुरली में आता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, तो मेरे शक्ति से अनेक जन्मों के विकर्म को विनाश कर सकते हो, भस्म कर सकते हो। उसके लिए हम इधर आए हैं, तो वो सवेरे आधा घंटा चाहिए। विधि है आत्मा समझ फिर मुझे याद करना, क्योंकि आत्मा के अंदर पाप है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं। ये दो काम अगर रेगुलरली जो करता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे एक गोली ले लो, अंदर जो बीमारी सिर दर्द है वो अपने आप ठीक कर देगा, जो गोली गई अंदर वो काम करता है। तो ऐसे ये ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति, ये दोनों सभी प्रकार की बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा। तो ऐसे हमने अपने जीवन में देखा, आपको ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते हो, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये नहीं करो, कोई नहीं व्यर्थ विचार करना नहीं चाहता है, आता है तो उसके लिए इन पीछे, इसके पीछे जाने के बदली सिर्फ दो काम, एक भगवान के बूंद रोज, और सवेरे आधा घंटा कम से कम, शाम को आधा, ये दो काम करते हो तो जो आप चाहते हो और जो बाबा चाहता है वो प्राप्त कर सकते हो, ऐसे मेरा अनुभव कहता है।
बहुत अच्छा भाई जी ने इस शब्द का विश्लेषण हमारे सामने रखे। मैं थोड़े शब्दों में डॉक्टर सचिन भाई से भी चाहूँगा कि ये जो हमारा विषय है आज, हेडिंग लास्ट सो फास्ट, इसका भाव क्या है, इस शब्द का हम कैसे भाई बहने सरल शब्दों में इसका अर्थ समझें।
ओम शांति। तो जैसे कि रामनाथ भाई जी ने बताया, हम बहुत दिनों के बाद रामनाथ भाई जी से मिल रहे हैं और इनको देखकर हमको वो दिन याद आ रहा है जब एकदम हम नए नए ज्ञान में आए थे 2003। तब भाई जी ने हमको एक बार पांडव भवन में जो लाइब्रेरी है उसके बाजू में एक कमरा होता था उस समय, वहाँ पर बिठाकर आमने सामने आधा घंटा तक बहुत पावरफुल दृष्टि दी थी। तब हम बहुत नए थे और भाई जी, तब से हम उनको जानते हैं। एक बार हम यहाँ पर थे पहले पढ़ने के लिए, यहाँ से फिर पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, तो जिस स्थान पर गए थे सांगली, वहाँ पर भी भाई साहब एक बार आए थे भट्टी कराने। तब भी बहुत हमको खुशी हुई थी कि मधुबन से कोई आया है जहाँ हमारा जन्म हुआ और जहाँ से हमने पालना ली। तो आज भाई साहब को देखकर हमको वो दिन याद आ रहा है कि कैसे एक नया बालक यज्ञ में आता है और पता नहीं अचानक एक दिन हाथ पकड़कर हमको लेके गए और आधा पौन घंटा तक कंटिन्यूस दृष्टि देते रहे। हमें पता नहीं भाई साहब को याद है या नहीं है, पुरानी बात है, परंतु हर आत्मा के पास ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं। वास्तव में अध्यात्म यदि एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वो है जागरण, अवेकनिंग, होश। केवल दो ही शब्दों का खेल है, स्मृति विस्मृति, जागरण बेहोशी। अध्यात्म अर्थात निरंतर जागृत अवस्था, निरंतर होश की अवस्था। जो भी बेहोशी में किया जाता है वो पाप है, जो भी जागरण में किया जाता है वो पुण्य है। काम कृत्यों पर नहीं, मन की स्थिति पर करना है। यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो जो केंद्र है वो हम हैं, और वो जो परिधि है, वो जो सर्कमफरेंस है, वो जो सर्कल है बाहर, वो सब कुछ है। एक्शन, बिहेवियर, स्पीच, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी सेवाएं, हमारे संबंध, सब कुछ। जैसे भाई साहब ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट ये करना है ये नहीं करना है। जब हम अवेकंड स्टेज में रहते हैं भीतर, तो अपने आप वही कर्म होते हैं जो होने चाहिए, अपने आप वही कर्म होते हैं जो श्रीमत अनुसार है। तो फास्ट पुरुषार्थ अर्थात संपूर्ण होश, अमूर्छा की अवस्था। जैसे यहाँ पर कोई चल रहा हो और गड्ढा हो, अगर वो जागा हुआ है तो कभी भी उसमें गिरेगा नहीं, पर हाँ बेहोशी में है तो गिर जाएगा। तो अध्यात्म अर्थात जागरण, अध्यात्म अर्थात होश, और जागरण अर्थात किससे जागना, एक भ्रम से जागना। एक अंधेरा कमरा है, उसमें हम टॉर्च लेकर जाए तो वहाँ प्रकाश हो जाता है, और प्रकाश जब होता है तब अंधेरा नहीं रहता है। परंतु उस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब दिखने लगती है। तो प्रकाश के आने से दो चीज़ें होती है, एक तो जो अनरियल था वो ख़त्म हो गया, और जो रियल था वो और अधिक रियल हो गया। तो ज्ञान भी वो प्रकाश है, अवेकंड स्टेज भी वो प्रकाश है। जैसे ही हम जाग जाते हैं फिर ये प्रतिज्ञाएं करने की नहीं जरूरत पड़ती, ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो कर रहे थे और वो गलत था तो अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि वो भ्रम था। और जो कुछ सत्य है वो और ज़्यादा सत्य हो जाता है। तो फास्ट पुरुषार्थ अर्थात निरंतर अटेंशन की अवस्था, फास्ट पुरुषार्थ अर्थात निरंतर जागरण की अवस्था। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, जब सूरज उगता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है और जब सूरज डूबता है तो अंधकार फिर आ जाता है। यदि तुम बच्चों की अवस्था ऐसी हो जाए कि तुम्हारे जीवन में निरंतर ज्ञान सूर्य प्रकट ही रहे तो अंधकार कभी होगा ही नहीं। तो निरंतर ज्ञान सूर्य प्रकट रहना अर्थात बुद्धि में निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे। अभी अभी शांतिवन में अव्यक्त वाणी चली थी जिसमें बाबा ने कहा था, या पिछले संडे भी, कि ऐसा नहीं कि शाम को जाग जाओ और दिन भर बेहोशी में रहो और शाम को याद आ जाए, रात्रि को चेकिंग करो, लास्ट संडे की मुरली। चेकिंग स्वतः होती रहे, सहज होती रहे, स्वाभाविक होती रहे। तो जितना जितना हम अटेंटिव रहेंगे, जितना जितना जागरण की अवस्था में रहेंगे, जितना जितना ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, बाबा के महावाक्य है, ज्ञान की बुलबुल निरंतर बुद्धि में क्या करती रहे, टिकलू टिकलू। मुरली से कोई भी एक पॉइंट ले लो, सारे दिन भर उसका अलग अलग समय में जब भी समय मिले चिंतन करते रहो। हमने मुरलियाँ बहुत सुन ली और मुरलियाँ बहुत लिख ली, मुरलियाँ लिखने से ज़्यादा अब टॉपिक्स लिखना चालू करो। जैसे भाई साहब ने कहा, एक शब्द ले लिया, उस शब्द की इतनी गहराई में जाओ, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है और गुणार्थ क्या है, ये चार बातें हैं। उस शब्द का अर्थ क्या है, उस वाक्य का अर्थ क्या है, वो पूरा वाक्य है उसका भाव क्या है, भावार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, गुड़ अर्थ क्या है। क्योंकि बाबा से सामान्य दिखने वाले बाबा के शब्दों में बहुत गुह्य रास छुपा हुआ है। तो फास्ट पुरुषार्थ करना अर्थात निरंतर ज्ञान की मस्ती में रहना। और यदि कोई शराब पीता है और फिर भी नशा नहीं चढ़ता है तो क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, शराब पी तो ली पर नशा चढ़ा ही नहीं। पहली बात, डोज बढ़ाना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ाना चाहिए। तो अभी जो डोज हम ले रहे हैं कम है, एक बार सुन लिया मुरली हो गया काम, नहीं, सारे दिन भर कई बार उसका चिंतन, डोज बढ़ाओ। दूसरा, सुबह एक बार पी लिया और दिन भर पिया ही नहीं तो कैसे नशा चढ़ेगा, मल्टीपल टाइम, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ पीने की। यह सभा है रूहानी पियक्कड़ों की। तीसरा, नशा कब चढ़ता है, जब दोस्त लोग साथ में होते, चीयर्स। तो ऐसे लोगों का संग, ऐसे साथियों का संग जो जिनको ज्ञान में रुचि है, जहां आप रहते हैं वहां ऐसा एक छोटा सा संगठन हो, कुमार अगर रहते हैं तो रात को सोने से पहले ज्ञान की चर्चा करें, बहने हैं तो ज्ञान की चर्चा करें, माताएं हैं, एक दो माताएं चाहिए, दो लोग चाहिए बस ज्ञान की चर्चा करने के लिए, परंतु ज्ञान की चर्चा करें और फिर सो जाए। ज्ञान हमारे वाणी से निकलता रहे ताकि ज्ञान के संस्कार ब्रेन में क्रिएट करे हो। मेडिकल साइंस इसको कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यू ट्रैक्स न्यू ब्रेन में क्रिएट हो जाए, ब्रेन रिवायरिंग, नए ज्ञान के संस्कार के लिए ज्ञान का, ज्ञान की चर्चा चाहिए। तो डोज को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, दोस्तों को लाओ, नीट सॉल्यूशन, डाइल्यूट वाला नहीं चाहिए, पानी नहीं डालना उसमें, जो है जैसा है वैसा। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि ज्ञान बुद्धि में समा जाए, मुरली और हमारे विचार एक हो जाए। अभी दोनों अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, सुबह मुरली सुनी पर हमारे विचार वही है, दोनों एक हो जाए, मिक्स हो जाए, घुल मिल जाए, तब परिवर्तन होगा। और जगदीश भाई जी का एक क्लास है जिन्होंने, वहाँ पर उन्होंने कहा था, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात केवल एक शब्द, परिवर्तन, दैट्स इट। तो वो होगा ये दो तीन बातें जो अभी हमने कही, उसको जीवन में लाने से। ओम शांति
जी। बहुत अच्छा, आप सब इनके मुख्य भाव को समझ गए होंगे, लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा के अंदर क्या क्या दिखाई देंगे। एक और इससे मिलता जुलता प्रश्न है भाई जी, जैसे हर ब्राह्मण बाबा के बनते ही ये सोचता है कि मैं बहुत लास्ट में आया, चाहे वो 20 साल पहले आया हो, चाहे 40 साल पहले आया हो, लेकिन आते ही पहले पहला मन में यही आता है कि अरे मैं तो बहुत लास्ट में आया, मैंने साकार बाबा को नहीं देखा, बहुत सारी दादियों को नहीं देख पाया। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है कि किस वर्ष में ज्ञान में आने वाले को हम लास्ट समझें, क्योंकि जब ज्ञान में आए तो हमें लगा कि हम लास्ट में आए हैं। अभी जो बाबा से जुड़े हैं नए नए, उन्हें लग रहा है कि हम लास्ट में आए हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई जी, जब आप 72 में ज्ञान में आए, उस समय भी आपको लगा होगा कि मैं लास्ट में आया। डॉक्टर साहब को भी लगा होगा, अरे तुम्हें सब बहुत आगे निकल गए, 2003 में आया, मैं अभी आया, अभी लास्ट में आया। तो मेरा भाव ये है कि हम इसको कैसे समझें कि ये लास्ट क्या है, आखिर किसको लास्ट समझेंगे? रामनाथ भाई जी।
ओम शांति। जिस समय आपके मन में विचार आया कि मैं लास्ट आया हूं, आपके अनुसार, दुनिया के अनुसार, दुनिया का लास्ट दिन किसी को पता नहीं है, किस समय परिवर्तन होगा, न बाबा ने बताया न किसी ने कहा। आपके मन में जब आया कि शायद कल विनाश हो जाए, अब मैं आ जाए, एक ही साल मेरे लिए है, वो एक साल के अंदर आपके लिए लास्ट है, तो क्या कर सकते हो आप? तो यहाँ समय की वैल्यू नहीं है, बहुत समय चाहिए नहीं, भगवान सिर्फ आपके दिल को देखता है। आपका दिल कितना स्वच्छ है, कितना चात्रिक है कि पद, मुझे ये पद पाना है, मुझे यहां पहुंचना है। तो ये दो शब्द अगर आपके दिल साफ है, दूसरा चात्रिक है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो लगन का। तो ये दो अगर आपके जीवन में है, एक मिनट भी बस, एक घंटा भी नहीं चाहिए, एक शब्द समझ में आया, उसको बाबा ने कहा झाटकू, एक ही समय स्वाहा, मुझे ये करना ही है। उसको कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय हुआ यही बाबा है और यही मेरा उद्धार करने वाला है, और वो जो कहता है मुझे आज ही करना है, कल भी नहीं, एक घंटे के बाद नहीं, अब भी करना है, अब भी उद्धार हो गया। एक दिन भी नहीं चाहिए, एक साल भी की जरूरत नहीं है, बुद्धि के अंदर निश्चय कि ये भगवान है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान समझ लिया तो उसने जो कहा वो तुरंत बुद्धि स्वीकार करती है। स्वीकार हो गया, जो हमारे अंदर कुछ संशय है, कुछ है, वो परिवर्तन पुरुषार्थ करने लगता है, योग करना है, ज्ञान सुनना है, सुनने लगता है, कोई संशय नहीं है। अब आप पूछेंगे योग बहुत करना चाहिए? नहीं, एक सेकंड बस। अगर एक सेकंड अगर आपका कनेक्शन जुड़ गया, 50 सालों से जो नहीं हुआ वो एक सेकंड में हो सकता, बाबा ने कहा एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक घंटा भी नहीं कहा। वो कनेक्शन कब जुड़ेगा? जब आपकी बुद्धि के लाइन क्लियर, बुद्धि के अंदर और कोई संशय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए अंतिम गति जो है बुद्धि के अंदर, कुछ भी दुविधा नहीं है, एक सेकंड में जुटता है और एक ही सेकंड के अंदर प्राप्ति है। बहुत समय चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ करना चाहिए, जरूरत नहीं है कि ये भगवान वो है, सेकंड में सब बात करता है। और आप जानते हैं, जैसे एक कागज आप धूप में रखो, सारा दिन रखो, सारा दिन निरंतर धूप गिरता है तो भी कुछ नहीं होता है। और वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह आपने पकड़ के रखा, एक ही मिनट के अंदर धुआं निकल जाता है, जलने लगता है, भस्म हो जाता है। ये है, तो इसको कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए जो समय है, जिस समय आपके बुद्धि में आया, ये अंतिम समय है, नहीं तो कल विनाश होने वाला है। अरे और एक घंटा सो जाते हैं, बाद में करते हैं, कल खाली हो जाएंगे तब करेंगे। तो उसके लिए समय स्वयं को निश्चित करना होता है, विश्वास।
जी, बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने अपने अनुभव से हम सबको सुनाया, क्योंकि प्रायः ये ब्राह्मणों के मन में प्रश्न आता है भाई जी, कि मैं भी जब 87 में ज्ञान में आया तो मुझे लगा उस समय ये चर्चा थी 2000 में विनाश हो जाएगा, तो हमें लगा बहुत कम समय हमारे लिए है और हमको ऐसा लगा कि हम बहुत लास्ट में आए। और बहुत सारे भाई बहन जब मिलते हैं तब ये चर्चा करते हैं कि अरे हम क्या करें, बहुत लास्ट में आए। भाई जी, आपसे मैं, डॉक्टर सचिन भाई जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूँ, आप 2003 में जब ईश्वरीय ज्ञान को समझे तो आपको कहीं मन में आया कि मैं लास्ट में आया?
बहुत ज़्यादा जी। जब हम आए तो इतना ज़्यादा नशा था कि उसका कोई ठिकाना नहीं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ
जी।
तो जैसे भाई साहब ने भी कहा, अभी वर्तमान समय यही मुख्य है। साइंस कहता है पास्ट और फ्यूचर ये सूडो टाइम है, ये वास्तव में समय है ही नहीं। समय अर्थात नाउ, अभी इसी वक्त। पास्ट में जो हुआ वो केवल याद है, भविष्य में जो होगा वो एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो रहा क्या, अभी इस समय, अभी सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, तीव्र पुरुषार्थ यही होगा कि यहाँ ऐसे बैठे, ऐसो बैठो कि जैसे यहाँ जो कुछ सुनाई दे रहा है या देख रहे हो उसके अतिरिक्त मन में और कुछ भी नहीं है। जो जो शब्द स्टेज से आ रहे हैं वो जैसे हमारा जीवन बनता जा रहा है। अपने जीवन को देखते जाओ और क्या क्या कमी है उसको भरते जाना। इस पल जीना है, दिस मोमेंट। इंग्लिश में कहते हैं इन दिस मोमेंट लाइज इटर्निटी, इस पल में पूरी सदी छिपी हुई है। अभी तक जो हुआ, कभी भी हम आए, पर ये समझे कि जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब भी मुझे स्टार्ट करना है, मेरे लिए ये नया दिन है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि रात को जब मैं सोता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मर गया, और दूसरे दिन जब सुबह उठता हूँ तो मेरा ये नया जन्म है, आज से सब कुछ करूँगा, जो आज आज तक कर नहीं पाया वो अब मैं करूँगा। तो ये तड़प तो रहनी ही चाहिए हर एक को कि हम लेट आए। वास्तव में ये जो भाव है ये हमें और आगे बढ़ाएगा कि हम लेट पहुँचे। अब हमें कम से कम समय में वो सब करना है। जैसे कोई स्कूल जनवरी में चालू हुई, हमने एडमिशन जुलाई में ली, एग्ज़ाम सभी की दिसंबर में ही है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो बैक कोर्स है उसको फिर से पढ़ना होगा। फिर से उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ज्ञान का चिंतन। टोटल अव्यक्त वाणियाँ हैं 1068 से लेकर तो 2017 के आसपास तक, कोई भी रिपीट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। टोटल जो बाबा की मुरलियाँ है जब तक बाबा आते रहे 1068। अब हमने अगर एडमिशन ली है 2000 में, 2010 में, तो इसके पहले का जो पेंडिंग कोर्स है वो हमें करना होगा। इसलिए हर एक ये लक्ष्य रखे कि ये सारी अव्यक्त वाणियों की कम से कम एक रीडिंग तो होनी चाहिए, नहीं तो कोई पेपर जीवन में आएगा और हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, पर बाबा क्या कहेगा, पीछे जाओ, 1972 में मैंने ये बात कह रखी है। अव्यक्त वाणियों में जो साइकोलॉजी की बातें बाबा ने कही है वो इस संसार के किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने आज तक नहीं कही है। इतनी डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट्स उन अव्यक्त वाणियों में है। तो ये भाव तो रहना ही चाहिए कि हम लेट आए हैं, ये भाव ही हमको आगे बढ़ाएगा। और एक दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है, बाइबल में एक छोटी सी कहानी, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, एक साहूकार है, बहुत बड़ा बगीचा है, सुबह उसने कुछ मजदूरों को रखा, मजदूर कम पड़ गए, काम ज़्यादा है, दोपहर को कुछ मजदूरों को बुलाया, काम बहुत ज़्यादा है, काम फिर भी मजदूर चाहिए, शाम को कुछ मजदूर आए, काम पूरा हुआ, अब पैसे देने की बारी। सुबह वालों को भी उतने ही पैसे दिए, दोपहर वालों को भी और शाम वालों को भी उतने ही पैसे दिए मजदूरी। अर्थात ही सुबह वाले जो थे चिढ़ गए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हम सुबह से काम कर रहे और ये दोपहर में आए और वो शाम को आया, सबको सेम, ऐसे कैसे हो सकता है। दोपहर वाले चिढ़ जाते हैं कि ये शाम वाले हमसे बाद में आए, इनको हमारे जैसी सेम कैसी दे रहे हो आप। तो मालिक क्या कहता है बताए, आई गिव आउट ऑफ अबेंडेंस, मेरा है पैसा, मैं चाहूं उतना दूं किसी को भी, इसमें ये है ही नहीं किसने क्या किया, कोई किसी भी समय आया हो वो मालिक है, वो सागर है, वो खजाने सभी उसके पास है, वो चाहे तो किसी पर भी सब कुछ लुटा सकता है। तो हम भी वो भाव अपने अंदर रखें कि कितने भी लेट आए हो परंतु वो तो अखूट सागर है, ऐसा नहीं कि पुराने वालों ने सब ले लिया और हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो संपन्न बनना है ऑप्शन
जी। बहुत अच्छा, मैं सभा में भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि किसको किसको लगता है कि हम लास्ट में आए हैं? किसी को लगता है ऐसा? हम बहुत लेट आए? सबको लगता है, तो आज सबको जवाब मिल जाएगा ना आखिरी तक। और अगला प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता है भाई जी, कि लास्ट सो फास्ट जो जाने वाली आत्माएं हैं बाबा की बच्ची, उनकी कुछ मुख्य निशानियां हम जानना चाहते हैं। क्या निशानी है वो आत्मा की जो खुद को भी लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और आसपास उनके साथ वालों को भी लगना चाहिए कि ये बहुत फास्ट जा रहा है। क्या उनके अंदर कुछ चिन्ह, कुछ निशानी दिखाई दे?
ओम शांति। हम अपने जीवन को देखते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा शुरू में आते, हमको तो कभी विचार नहीं आया कि हम लास्ट में आए। तो उस समय भी कुछ भी नहीं था, मधुबन में भी 45-5 किलो चावल बन जाता था, 40 ही लोग थे शुरू में हम आए, तभी कभी कभी लगा नहीं है कि लास्ट है। फिर भी लगन थी कि हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, अंश भी पुराने संस्कार रहना नहीं चाहिए, ये लक्ष्य था। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब मधुबन आए, एक मिनट भी हमने कहीं व्यर्थ नहीं गवाया। एक मिनट, सवेरे रात को 10-11 बजे सोते थे तो भी देखते थे बाबा के कमरे में सबसे पहले मुझे पहुंचना है, क्योंकि 2 बजे द वॉचमैन चेंज हो जाता है, तो वो 2 बजे लास्ट में आता है। पहले वाला 2 बजे बाबा कमरे में आएगा, फिर ड्यूटी में जाएगा, कोई पहुंचना नहीं चाहिए। बाबा की दृष्टि सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। घड़ी को देखते रहता था, 1:30 बजे उठ करके मुंह धो करके पहले बाबा के कमरे में, उसके बाद जनरल योग भी करना पड़ता था 4 से 5। विश्वरतन दादा थे, वो कहीं गए तो हमको करना पड़ता था हिस्ट्री हॉल में। दीदी मनमोहिनी बैठती थी एक्यूरेट 4 बजे को अलर्ट, और सभी दादियां हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, तो एक से का। और उसके बाद भी इतना ही नहीं, दिन में भी 12-1 बजे तक सेवा हो गई, खाना खा के सो गए, 3 बजे उठकर इधर उधर कहीं नहीं देखते थे। ओम शांति भवन बनने से भी पहले पीछे पहाड़ी में, वहां जाके 3 बजे से 6 बजे तक एक ही अभ्यास। उस समय 69-70 की मुरली चलती थी कि बच्चे मैं आया हुआ हूं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी दृष्टि खोलो, मैं सन्मुख खड़ा हूं, मना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो वहां बैठ के कितना, 3 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि 6:30 बजे को दीदी मनमोहिनी हिस्ट्री हॉल में बैठती थी, हम 4-5 कुमार थे, अगर एक भी नहीं आया अरे वो कहां गया, 4-5 ही थे। 6:30 बजे दीदी एक्यूरेट योग करने आती थी, तो 6:20 तक पहुंचना है, हाथ मुंह धो करके 6:30 बजे योग में बैठना है। एक सेकंड भी आज तक भी मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, कहीं ओपनिंग होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का और कुछ होता है, एक कल्चरल प्रोग्राम इतना चलता था, आज तक भी मैंने एक भी कल्चरल प्रोग्राम कभी नहीं देखा। इतने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस में एक दिन भी नहीं गया। टाइम हमको क्या करना है, हम आए किसके लिए? हमको बाबा से जो कुछ, बाबा से ज्ञान और योग और सेवा, ये 3 के अलावा एक सेकंड भी इधर उधर नहीं आज तक भी। इवन जनरल मीटिंग होता है, मीटिंग में भी पूरा टाइम बैठना पड़ता है, हम भी अपना जब टाइम होता है कुछ प्रोग्राम तो आधा घंटे के लिए गया और आ गया, फुल टाइम बैठे रहो यहां नहीं, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। समय का महत्व जान लिया, सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान और योग और सेवा के अलावा यह संगम युग का जो समय मिला, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यह लक्ष्य शुरू से आज तक रहा। तो मैं अपने आप को पूछता हूं, कहीं मैंने 1 मिनट भी व्यर्थ गवाया किसी के बातों में, सुनने में, बोलने में, देखने में? कोई टीवी देखता रह गया, कोई क्रिकेट देखता रहा, आज तक भी नहीं। आज तक भी शांतिवन में अब भी बच्चों का इसका प्रोग्राम चला, कल्चरल प्रोग्राम चलता, आज तक भी नहीं है उस दिन से। तो जिसके जीवन के लक्षण है ये, वो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाता है, क्योंकि उसको पता है संगम युग का एक एक सेकंड का वैल्यू, बाबा ने कहा एक सेकंड एक जन्म के समान है। बाबा ने कहा, मैंने किया, मैंने समझा, ये जरूरी है। बाबा ने बहुत कुछ कहा है कि मैंने समझा, मैंने उसको आचरण में लाया, जो उठे वो अर्जुन। तो ये निशानी।
बहुत अच्छी अच्छी बातें भाई जी ने सरल शब्दों में सुनाया कि सचमुच ऐसे पुराने महारथी हमारे रामनाथ भाई जी, और ज्ञान के मक्खन में हमेशा डूबे रहते हैं, और सचमुच दादियों का इतना प्यार, बाप दादा का इतना प्यार मिला है। और भाई जी आप तो एकदम शुरू में ही आ गए, तो आपको नहीं लगा होगा कि मैं लास्ट में आया हूँ, लेकिन प्रायः बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लगता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर सचिन भाई जी, किसी बहन ने पूछा है कि ना मैं साकार बाबा को देख पाई और ना मैं गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त मिलन मना पाई, तो क्या मुझे फास्ट जाने का मार्जिन है?
क्यों नहीं है। हम एक बार किसी सेंटर पर गए थे तो एक माता से मिले, बहन जी ने बताया ये 5 साल से ज्ञान में है, पर ये मम्मा की स्टूडेंट रही हुई है। वो थी किसकी स्टूडेंट? मम्मा की स्टूडेंट। तब उसको ज्ञान में मिला था 60s में, और फिर ज्ञान को छोड़ दिया, और अभी वापस 5 साल से ज्ञान में है। पहले आ जाओ और फिर छोड़ के जाओ, इससे तो अच्छा है कि जब हम आए, जिस तारीख को आए, बस वहीं से चालू करना है। ये सोचना ही नहीं है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हो सकता है हमारा ये सेकंड बर्थ है इसी बीके जीवन का, हो सकता है कि हमने भक्ति अभी पूरी हमारी हुई नहीं थी, इसलिए अब लेट ज्ञान मिला। कारण कौन सा है ये हमें पता नहीं है, पर हम अब आए हैं। अव्यक्त बाबा, साकार बाबा चले गए, अव्यक्त बाबा का पाठ पूरा हो गया, दादियाँ भी चली गई, अब आए हैं। अब इसी रियलाइजेशन को और तीव्र करना है और बढ़ाना है। अगर मैं इतना लेट आई हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसे भाई साहब ने कहा, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक मिनट भी संसार की व्यर्थ बातों में झरमोई झगमोई, कौन क्या कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, किस केंद्र में क्या हो रहा है, किससे कोई मतलब नहीं, केवल फोकस अपने लक्ष्य पर। अगर ऐसी तीव्रता है, चाहे हम कभी भी आए, किसी भी समय आए हो, हम आगे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन है, परंतु टाइम वेस्टर्स सारे हटा देने पड़ेंगे, एनर्जी ड्रेनर्स जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, वो सारी बातों को हटा देना पड़ेगा। वो हर चीज़ जो हमें नीचे खींचते हैं, जो हर चीज़ जो हमारे टाइम को, ऊर्जा को नष्ट करते हैं, वो सब हमें हटाना होगा। और उसके लिए वो जागरण की अवस्था चाहिए, वो अवेयरनेस चाहिए, वो रियलाइजेशन चाहिए। कितना कौन रियलाइज्ड स्टेज में है कि मैं वास्तव में लेट आया हूँ, आई हूँ, अब मुझे, अब तक जो हुआ वो हुआ, फॉरगेट द पास्ट, रात गई बात गई, जो कुछ किया, विकर्म हुए, जो भी हुआ होगा, अब मैं आई हूँ, अब मुझे यहाँ से ऐसे चालू करना है कि एक एक दिन, एक एक रात क्रांति की रात हो जाए। एक एक दिन मुझे अपने अंदर का एक एक जो विकार, संस्कार, विकर्म, जो कुछ है, सब नष्ट करना है। अंग्रेजी में कहते हैं टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को नष्ट करते जाओ, और आत्मा शुद्ध सोना हो जाए, संपूर्ण पवित्रता की वो अवस्था। वास्तव में इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता सबसे आगे है, इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति सबसे आगे है, और ये दो चीज़ें एकदम आंतरिक है, और इस पर हरेक का समान अधिकार है। तो चाहे किसी भी स्टेज में आया हो, आगे जा सकता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है, परंतु इस अवेयरनेस को लाना है अपने अंदर।
जी बहुत अच्छे, हम सब आज इस सभा में बैठे हुए भाई बहनें भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच दोनों ऐसे महारथी भाई बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पुरुषार्थ के ऊपर फोकस करते हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मणों को कल्चर प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है कल्चर प्रोग्राम में, लेकिन भाई जी जैसे आज मैं पहली बार सुना कि मैं कभी कोई कल्चर प्रोग्राम नहीं देखता, तो ऐसे बाबा के घर में देखो कितने गुप्त रतन विराजमान है और जिनके आंतरिक पुरुषार्थ से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। सचिन भाई जी ने जैसे बताया कि शुरू में ही उनको अलग से बुला करके आधा घंटा तक दृष्टि दिए, ये भी बात आज हमारे सामने प्रकट हुए कि जब भी मैं रामनाथ भाई जी को देखता हूँ तो बस ज्ञान की चर्चा करते हैं। हम एक बार नक्की लेक में मिले, हमारे साथ कुछ बहनें थी, तो पहला प्रश्न यही था कि आज बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली में क्या था। तो ये अंदर की जो पुरुषार्थ है वो सामने प्रकट होते हैं। भाई जी किसी ने पूछा है कि मुझे फास्ट जाना है, बहुत इच्छा है फास्ट जाने की, लास्ट में ही आया हूँ, तो मुझे कितना घंटा योग करना होगा। रामनाथ भाई जी
ओम शांति। कितना घंटा करना चाहते हो? कितनी कमाई करना चाहते हो? यहाँ घंटे और समय का नहीं है। तो पहले भी सुनाया, एक सेकंड संगम का एक वर्ष के समान बाबा ने कहा। तो इसके लिए सवेरे आप 15 मिनट भी बैठो, आधा घंटा, आपकी हर एक की कैपेसिटी है, हर एक की अपनी एबिलिटी है। जो कोई बुजुर्ग है बैठ नहीं सकते हैं तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विधि जरूर चाहिए। तो सारी दुनिया के अंदर ये विधि नहीं है, सारी दुनिया जो बताती है और शिव बाबा जो बताता है, दोनों में रात दिन का अंतर है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है? तो यहां राजयोग, यहां चिंतन करने की विधि अलग है और दुनिया की विधि अलग है। दुनिया में चिंतन के लिए मन यूज करते सिर्फ, तो यहां मन और बुद्धि दोनों चाहिए। इसलिए बुद्धि योग कहा, दिल से मुझे याद करो कहा। इसलिए बाबा रोज कहता है आत्मा समझो। अब ये भाई दिखाई देता मुझको, ये सपना मुझे समझो, तो उसकी विधि है। बैठते ही अपने आप से पूछो, क्योंकि आप कहते हो भाई जी आप तो फरिश्ता बन गए, आप तो कर्मातीत बन गए, आप समझ रहे हो, लेकिन मुझे पता है मैंने इस जीवन में कितना पाप किया है। वो आपको पता नहीं है, वो मुझे मना किसको पता है? बुद्धि को पता है, बुद्धि सब जानती है, याद रखती है। तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहती है मैंने बहुत पाप किया है, मैं भगवान के नजदीक जा नहीं सकूंगा, उसके जैसे बनना चाहिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये महसूस करता है। इसलिए ज्ञान युक्त ध्यान है, यहां भावना से नहीं समस्या है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो वो बता रहे थे भले 5-6 मिनट बैठो, विधि पूर्वक विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर बैठे हम 1 घंटा इधर के, अभी देख लो 2 मिनट गीत बजा, आप साक्षी होके देख लो हमारे मन में बुद्धि में कौन कौन याद आया। किसी की मन बुद्धि एक शिव बाबा के तरफ थी, ऐसे कोटों में कोई होगा, है ना। तो अपने आप को देख लो, तो उसकी विधि है, उसके लिए समय की वैल्यू नहीं है। 5-6 मिनट बैठो, बुद्धि की लाइन क्लियर कहते हैं, कनेक्शन क्लियर कहते हैं, रिलेशन क्लियर कहते हैं, 3 नाम आते हैं। 5-6 मिनट के अंदर कनेक्शन क्लियर, बैठते इधर उधर का कोई विचार नहीं, सीधा मैं कौन और मेरा कौन, उसकी विधि है। आत्मा का चिंतन करने की विधि बताया, मैं कौन पूछो, बुद्धि तुरंत जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। उधर दुविधा नहीं होती है, ये हूं ये नहीं हूं, कि पूरा विषय समझ में आया है बुद्धि के अंदर, तो तुरंत प्रश्न पड़ता है बुद्धि जब, ये दोनों एक होता है, एकाग्र होता है, तो व्यर्थ नींद माया कुछ नहीं आती है। जिसको ये ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए व्यर्थ माया नींद ये सब आता है। तो यहां व्यवस्था दिया बाबा ने, आत्मा समझो, ये न समझते हुए, चाहे विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो क्रोध भी जीत नहीं सका। आपको मैं 2 बजे उठता हूं, 3 बजे उठता हूं, इतना योग करता हूं, और क्रोध भी नहीं गया अभी तक, उठ के क्या फायदा। विधि 5 मिनट बैठो तो समय यहां नहीं आए, विधि पूर्वक 5 मिनट बैठते हो उसके अंदर प्रूफ लाइन क्लियर, कोई इधर उधर के विचार नहीं, सीधा परम धाम सूक्ष्मतन। और बाबा से अच्छी तरह से रूरियान, परम धाम में बाबा के एक एक शक्तियों का चिंतन जुड़ गए उधर, उसको कहा लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर, फिर रिलेशन संबंध है, अपने आप सारे शक्ति बढ़ता है। ये तीनों अगर है विधि पूर्वक करते हो तो 5-10 मिनट ही, बट 1-1 घंटा नहीं। उसको इंग्लिश में कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर, बहुत खाया और डाइजेशन नहीं किया और बीमार हो जाएंगे। बैठे योग में 1/2 घंटा और इधर उधर के विचार आए, ना योग लग रहा है, ना दूसरों नींद भी आ रहे, दूसरों को भी डिस्टर्ब, व्यर्थ विचार, इसलिए थोड़ा समय बैठो। समय की नहीं, विधि को अच्छी तरह से जान लो, और रोज मुरली में आता है देखना, 1 दिन भी नहीं आया ऐसा नहीं होगा। आत्मा समझ फिर मुझे याद करो, और अपने आप को साक्षी होके पूछना कि हम आत्मा समझ के याद करते हैं कि योग में बैठते ही बाबा रूरियान शुरू कर दिया, कमेंट्री शुरू कर दिया, है ना, बोलना शुरू कर दिया। तो अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हैं और रहना चाहिए। सत्युग से लेकर अंत तक शरीर के बिगर आत्मा इस सृष्टि पर 1 सेकंड भी नहीं रहती है। तो शरीर चाहिए, शरीर में रहना है तो, लेकिन शरीर का चिंतन न चले, इतना ही। अशरीरी बनो, 5 नाम दिया है, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमान बनो, कैसे, तो ये 5 प्रश्न 5 मिनट आत्मचिंतन, चिंतन करने की विधि यहां अलग है, मैं कौन पूछना है, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। तो ये दोनों एक होते हैं तो उधर एकाग्रता होती है। तो अगर इस विधि पूर्वक, फिर शिव बाबा कौन? शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी एक शक्ति ले लो, आठ शक्तियां हैं, एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में आएंगे। 5 मिनट 10 मिनट एक घंटे तक आप उसी के ऊपर चिंतन करो, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? तो उसके गहराई में गए, एकाग्र हो गए। वो शक्ति विकर्म विनाश करती है। क्या सोचते हो, शक्ति का चिंतन करते हो तो शक्तिशाली स्थिति बनती है। तो आज शक्तिशाली स्थिति चाहिए। तो इसलिए एक ही 8 शक्तियां, एक शक्ति ले लो, 2 शक्ति ले लो, आप और बाप के बीच में और कोई नहीं आया, इसको कहते हैं यथार्थ योग। 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, मैक्सिमम मैंने देखा अगर एक जगह पर बैठा, आज के दुनिया के जीवन के अनुसार, शरीर के अनुसार कंफर्टेबल 15 मिनट आराम से बैठ सकते हो एक रस, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और भी 5, 10, 15 सालों से अभ्यास कर रहा है, खींच करके 1.5 घंटा 1 घंटा, उससे ऊपर नहीं। इतके ऊपर एकाग्र करना चाहो, इतनी ताकत आत्मा के अंदर नहीं, इतनी पुण्य आत्मा नहीं है। तो इसलिए लक्ष्य रखो 15 मिनट ही अच्छी तरह से बैठना चाहिए, 1 सेकंड भी उसके अंदर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी विधि है, नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ में नहीं है, विधि पूर्वक करो। मैं कौन? पूछना, बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप? बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण? बुद्धि जवाब देती है। दोनों अगर साथ साथ चलता है तो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे 15 मिनट अमृत वेले सवेरे, 15 मिनट शाम को, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, ठीक है? ओम शांति।
समय की बात नहीं है, जैसे भाई जी ने बताया कि हमें योगी जीवन और हमारे ये वो सब कर्म में अच्छी तरह से उतरना चाहिए। डॉक्टर सचिन भाई जी से एक प्रश्न है, एक कुमार ने प्रश्न पूछा है, मैं विगत 5 वर्ष से ज्ञान में हूँ, क्या मुझे लास्ट सो फास्ट जाने के लिए समर्पित होना पड़ेगा?
ओम शांति। समर्पण बहुत बड़ा शब्द है। एक है तन का समर्पण, एक है मन का, एक है बुद्धि का, एक है संस्कारों का, एक है धन का, एक है धन संपत्ति या संबंध संपर्क का। अलग अलग समर्पण की श्रेणियां हैं और सबसे ऊंचा समर्पण जो है, या कहो सबसे सूक्ष्म जो समर्पण है, वो है संस्कारों का समर्पण। क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक है, हमारा उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, परंतु हाँ ये सब सीढ़ियां है। स्थूल समर्पण से चालू होती है यात्रा और सूक्ष्म समर्पण पर रुकती है। पर समर्पण वास्तव में है क्या? जो उसकी इच्छा वो हमारी इच्छा बन जाए, जिसके प्रति हम समर्पित हो रहे हैं उसके मन में जो है वो हमारे मन में हो जाए, उसके जो संकल्प, उसके जो बोल, उसके जो कर्म, वो हमारे संकल्प बोल और कर्म हो जाए। स्थूल समर्पण हमें सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु लक्ष्य हमेशा सूक्ष्म समर्पण का हो। समर्पण का संबंध किसी वस्त्र से नहीं है, समर्पण का संबंध किसी बैच से नहीं है, समर्पण का संबंध किसी स्थान से नहीं है, और ना ही समर्पण का संबंध किसी समारोह से है। समर्पण किसी समारोह का नहीं, समर्पण स्थिति का नाम है। मन की वो अवस्था, चेतना की वो स्थिति, जिसमें हर कदम, हर संकल्प, हर बोल ऐसे चल रहे, ऐसे कर रहे जैसे समर्पित हुए जा रहे, सब कुछ ऊपर। हमारी दुनिया में लोग स्तुति कर रहे, ऊपर भेज दिया, कोई हमारे विरोध में भेज कर रहे, सब ऊपर, हमारा कुछ भी नहीं, एक साक्षी भाव, समर्पण का संबंध साक्षी से है। जितनी जितनी अंतर में विटनेस की स्टेज बढ़ती जाएगी, अपने आप समर्पण आते जाएगा। हाँ, स्थूल समर्पण की अगर बात कर रहे तो उसका अपना महत्व है, वो एक सुरक्षा कवच जैसा है। अगर परिस्थितियां अलाउ करती है तो गो हेड, परंतु यदि जिम्मेदारियां है, घर परिवार है और बहुत सी बातें हैं, तो जहां हो जैसे हो ये समझना है कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। एक कुमार था, उसको जो सैलरी मिलती थी आके सबसे पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने रख देता था। अब बाबा मुझे दे रहा है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये भगवान से मुझे मिल रहा है, ये समर्पण भाव है। एक जगह हम गए थे, सेंटर की बहनें थी, सब्जियां लाई, कुछ भी लाया, पहले बाबा के सामने रख देते थे, ये समर्पण। विदेश में जाओ, ये घर किसका है, ये बाबा का घर है, ये बाबा की गाड़ी है, हर जगह वो गॉड कॉन्शियसनेस, बाबा कॉन्शियसनेस। आत्मा प्रभु प्रेम में इतनी डूब जाए, ऐसी प्रेममयी अवस्था का ही नाम समर्पण है। जितना स्थूल समर्पण हम देखेंगे तो हमारे मन में स्थूलता आएगी, परंतु जो सूक्ष्म उसका लक्ष्य था वो शायद भूल जाएगा। इसलिए स्थूल का सोच भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु लक्ष्य हमेशा सूक्ष्म समर्पण का हो। केवल धन दे दिया, ये कोई बहुत बड़ा समर्पण नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब समर्पित कर दिया, ये बड़ी ऊंचाई की अवस्थाएं हैं। और इन सभी के लिए बहुत अच्छे योग की आवश्यकता है। जैसे भाई साहब योग के विषय में कह रहे थे, मनुष्य योग, आत्मा योग किसी से नहीं सीखती है, एक ही चीज है जो उसे योग सिखाती है, वो है उसका अपना अनुभव। अपने अनुभव से ही योग सीखते 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 आत्मा ऊपर जाती है, और जैसे जैसे योग परिपक्व होता है, साक्षी स्थिति परिपक्व होती है, परिणाम समर्पणमय जीवन। तो ये कुमार जो भी सोच रहा है, बाबा के साथ बैठ जाए और बाबा की क्या टचिंग होती है। 3 दिन लगातार अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति में बैठ जाओ, 2 से 5 के बीच, हो सके तो पूरा ही 3 घंटा एकदम ज्वालामुखी योग की अवस्था में समर्पण भाव से, कि बाबा अब तुम बताओ मैं क्या करूं, एक चौराहे पर हूं, इधर या इधर, कहां जाऊं, अपने आप उत्तर आ जाएगा जी।
बहुत अच्छा भाई जी ने सुंदर तरीके से विश्लेषण किया। जो भी घर परिवार में है वो भी अगर बाबा मैं है, बाबा का समझ रहे हैं सब कुछ को, वो घर में रह करके भी एक प्रकार से समर्पित जैसे जीवन बिता सकते हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न भाई जी, कि कई बार कोई आत्मा पुरुषार्थ में आगे जाने लगती है तो कभी कभी उनके सामने विकट परीक्षाएं आने लगती है, जैसे कभी कभी पुराने संस्कार या कोई हिसाब किताब, शारीरिक व्याधियां, और कभी एक ब्राह्मण परिवार के तरफ से भी लोगों को ईर्ष्या होने लग जाती है, कभी कमेंट करने लग जाते हैं, बहुत आगे जा रहे हो, अभी तो आए हो ज्ञान में, अरे हम लोग इतने साल से तो ऐसे ही चल रहे हैं। इस तरह की कुछ परीक्षाएं आती है, हिसाब किताब की, शारीरिक बीमारियों की, कुछ ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी, ये सब को हम कैसे फेस करें और आगे कैसे बढ़ें।
ओम शांति। देखो, भारत के अगर आप परंपरा देख लो, शुरू से राजाई से लेकर आज तक, लेग पुलिंग कहते हैं, ये परंपरा भारत में सिर्फ है और कहीं नहीं है। कोई एक चढ़ता है तो उसको 10 नीचे खींचते हैं, तो इसी का नाम है पुरुषार्थ। नहीं तो पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है, रास्ता अगर सीधा है तो मेहनत ही नहीं है, कोई सब लोग जा सकते हैं। तो ये ज्ञान और योग इसी के लिए बाबा ने दिया कि आपके रास्ते पर बहुत कांटे हैं, खड्डे हैं, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किया था, ये और किसी ने नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है,
किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ हो रहा है, मैंने ही अनेक जन्मों में, कितने जन्मों में, 63 जन्मों में कितने लोगों के संबंध संपर्क में आया, कितने लोगों से लिया दिया, कुछ हिसाब किताब है। कहीं ज्यादा लिया कम दिया, कब ज्यादा कम दिया और ज्यादा लिया, ऐसे कुछ है। तो वो सब हमारे जीवन में आएंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं। अगर आपके पास ये 2 अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जो शिव बाबा ने दिया, योग और ज्ञान, इन 2 अस्त्रों के कारण कितनी भी तूफान परिस्थिति आने दो, आपको अपने आप पार कराएगा। इसलिए के सत्य के नाम हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं, है ना। परीक्षाएं आती है, समस्या आती है, सब कुछ आएगा, देखने वालों को लगेगा अरे इतनी बड़ी परीक्षा, उसके लिए कुछ नहीं कि उसके पास अस्त्र है, उसके पास बल है। तो ये ज्ञान और योग की शक्ति है, उसको कोई देखने वालों को लगे इतना हिल रहा है, इसके सामने ये समस्या है, इसके सामने ये, लेकिन वो निश्चिंत है। अगर ये 2 शक्ति नहीं है, जो पहले शुरू में बताया, 1 बूंद भगवान का, मुरली का, आज का, सवेरे से शाम तक अगर बुद्धि में जरूर चाहिए, मैंने सुना, लिख के रखा, कोई काम का नहीं है, स्मृति में चाहिए। शाम को अगर रात को कोई पूछे आपको आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत बुद्धि के अंदर जागृत है। क्यों? कि बुद्धि सारे शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करती है। ये सारे शरीर के इंद्रियों को कौन चलाता है? तब हम कहते रहे बुद्धू है, कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए इसको पता ही नहीं है। तो बुद्धि सब कुछ मैनेज करती है, इसलिए जागती ज्योत का मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। अगर उस बुद्धि के अंदर ज्ञान और योग है, बाबा की याद है, परिस्थिति आती है वो आपको पार कराएगा। इसलिए बाबा ने कहा बाप का साथ और हाथ, बाप और दादा, ये दोनों चाहिए, ज्ञान और योग। साथ बाबा का, शुभ बाबा का, सर्वशक्तिवान है, और हाथ में कौन, ज्ञान चाहिए, मदद चाहिए, जो बाबा अपने अनुभव से, ब्रह्मा बाबा भी अनुभव से बच्चों को सिखाता है। क्योंकि अगर साकार के बिगर ज्ञान नहीं मिलेगा, निराकार कैसे सुनाएगा। हाथ और साथ अगर है, ये 2 अच्छी तरह स्टडी करते हो, बहुत नहीं, बहुत ज्ञान सुनना चाहिए नहीं, 1 बूंद बस, बहुत लोभ भी नहीं करना, बहुत मुझे पढ़ना चाहिए नहीं, 2 मैंने कुक स्पॉइल द पॉट, कभी कभी बहुत सुन लिया, क्या करो क्या नहीं करो, 1 ही बूंद बस, बूंद बूंद मिलकर के तालाब बनता है, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी। तो ये 2 करते हो, कितनी समस्या कितनी परिस्थिति आने दो, हिलेंगी डुलेंगी लेकिन कभी डुलेंगी नहीं, डुबेंगी नहीं। इसको कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति जी।
पेपर तो आएंगे, परीक्षाएं आएगी, लेकिन अगर जैसे भाई जी ने बताया कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो, ज्ञान योग की पराकाष्ठा हो, तो हर पेपर से हम पास हो सकते हैं। डॉक्टर सचिन भाई जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे रामनाथ भाई जी ने अपने कुछ प्लानिंग जीवन की बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, संग से बिल्कुल ध्यान रखते हैं, आपको हम देखते हैं, पूरा ब्राह्मण परिवार आपको जानता है, आजकल आपकी स्वपुरुषार्थ बहुत तीव्र है, आपने अपने जीवन में किन बातों को विशेष महत्व दिया है, क्या सीक्रेट आपने अपने लिए प्लान बनाया है, कोई ऐसी मुख्य कुछ सिद्धांत हो तो आज हम अपने भाई बहनों को सुनना चाहते हैं आपसे कि अपने जीवन में क्या आपने कुछ सीक्रेट, कुछ सिद्धांत जो आज प्रकट कर दीजिए आप।
ओम शांति। सबसे पहला तो अमृत वेला, किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में वो मिस ना हो। हम जहाँ सेवा करते हैं वहाँ 24 घंटे इमरजेंसीज चालू रहती है, रात भर पेशेंट्स आते रहते हैं, कई बार जाना पड़ता है, कई बार 1 बजे पेशेंट आता है, 2 बजे रिपोर्ट्स आते हैं, तीन बजे पेशेंट डिट्यूरेट हो जाता है, बीच में जाना पड़ता है, 2400 घंटे कुछ ना कुछ इमरजेंसी चालू रहती है, ओपीडीज अलग, इमरजेंसीज अलग, और पेशेंट एक आता है तो उनके 10 रिश्तेदार सब एंग्शियस, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे होगा। माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, 100 लोग आते हैं, 40 लोग आते हैं, उसमें से एक को हार्ट अटैक आ जाता है, रिश्तेदार 40 लोग बाहर इंतज़ार। तो निरंतर एक जिसको कहेंगे इन परिस्थितियों से हम घिरे रहते हैं 2400 घंटे, परंतु ये सब करते हुए भी हमारा लक्ष्य रहता है कि हम 2 बजे तक मधुबन पहुंच जाए सुबह, चाहे फिर कितने भी बजे सोए। और कई बार तो हम सो रहे हैं परंतु जैसे जागे ही हुए हैं, ऐसी ही अवस्था रहती है, क्योंकि अब आदत ऐसी पड़ गई है कि पता नहीं कब फ़ोन बजेगा, कब पेशेंट को क्या होगा, और हमें तुरंत जाना है। सोए हैं परंतु आँख जैसे, और उठते हैं तो ऐसा फ्रेश कि जैसे अब नींद का नाम निशान नहीं। और वो जो अमृत वेला है वो इतना शक्तिशाली हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए कि जिसमें आत्मा प्रभु प्रेम में डूब जाए, इतना डूब जाए कि हर अमृत वेले एक बार आंखों से वो प्रभु प्रेम के आंसू गिर जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम कहेंगे वो है अमृत वेला, दूसरा ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का गहराई से चिंतन, मौन एकांत। आबू की जितनी पहाड़ियां हैं, हमें नहीं लगता ऐसी कोई पहाड़ी बची होगी जहां हम नहीं गए, और विशेषतः जब छुट्टी होती है संडे का दिन तो लगभग पूरा के पूरा दिन ही, कभी 6 घंटा कभी 8 घंटा उस एक ही अव्यक्त मुरली संडे की, हम रात में उसको रिवाइज कराते हैं, पर उस रिवीजन से पहले कम से कम 20 बार से भी ज़्यादा बार वो पढ़ चुके होते हैं, इस हद तक कि एक एक लाइन एक एक शब्द कहाँ है कैसा है वो याद हो जाता है, और वो सारी अवस्थाएँ इस एकांत में, इस मौन में। इसलिए हमने कहा ज्ञान सूचना नहीं है, हमारे पास सूचनाएँ बहुत है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है, ये संगम युग है, ये भगवान है, ये ब्रह्मा है, इस तन में भगवान आया है, ढेर सारी सूचनाएं हैं, परंतु ज्ञान सूचनाओं का संचय नहीं है। ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव, ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन, ज्ञान अर्थात अवेकनिंग। वो अवेकनिंग उस मौन की और उस एकांत की अवस्था में ही आ सकती। अध्यात्म अकेले चलने का मार्ग है, संगठन का अपना महत्व है, परंतु जाना हर एक को अपना है अकेले में। तो वो ज्ञान का चिंतन, ये दूसरी बात, और तीसरा अखंड पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। जैसे भाई साहब ने कहा ये कल्चरल प्रोग्राम, ये वो, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे अटेंशन को आकर्षित कर देती है, हमारी बुद्धि को हिला देती है, इन सब चीज़ों से जैसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे ये है ही नहीं हमारे लिए। 14 बरस राम वनवासी, जैसे राम का जीवन वनवाह में था, जैसे राम का जीवन तपस्वी था, सन्यासी था, वैरागी था, वैसे हमारा भी जीवन इस सब कुछ संपन्नता के बीच में रहते हुए भी जैसे हम अलिप्त है, विरक्त है हर चीज़ से। मुझे यहाँ की कोई चीज़ की, किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मिनिमलिस्टिक लिविंग, कम से कम चीज़ों के साथ आई एम हैप्पी। मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा। याद है जब प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम 5 साल पूरे हुए और जाने का समय, एक सूटकेस थी जाते समय, बस अगर हम प्रेसिडेंट होते तो कितने ट्रक भर के गए होते। तो ये योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है, संपूर्ण पवित्रता, कहीं पर भी हमारी पवित्रता खंडित ना हो, उसके लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म पुरुषार्थ, जैसे भाई साहब ने कहा आत्मिक दृष्टि, ये कौन है, जब भी किसी को देखो, जब तुम आत्मा देखते हो तो उसे करंट देते हो। फिर ये स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, असुंदर है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, जवान है, क्या है, ये सब की तरफ ध्यान जाए नहीं, देह की तरफ ध्यान नहीं। देह, देह मिट्टी और संसार असार, ये परिभाषा है वैराग की। तो निरंतर वो वैराग की ज्वाला अंदर जलती रहे। बिना वैराग के तो कुछ भी नहीं हो सकता इस जीवन में। बिना वैराग के सकाश भी नहीं दी जा सकती है किसी को। हम सोचे कि इसको हम सकाश दे, इसको शुभकामनाएं दे, पर उस व्यक्ति से हमारा इतना लगाव है, सकाश नहीं जाएगी। तो संपूर्ण पवित्रता और चौथा संपूर्ण वैराग, निरंतर वैराग की अवस्था निरंतर भीतर। तो ये चारों ही बातें ऐसी हैं कि जो हमें लगता है हमारे पुरुषार्थ को कभी भी डल होने नहीं देती। मुझे कभी याद ही नहीं कि हमारे मुख से कभी निकला कि आज मुझे थकान हो गई है, आज मैं थक गया हूँ, आज मैं उठूँगा नहीं। कितने भी बजे हो, कैसे भी बजे हो, मुझे याद है हम एक बार ट्रेन से जा रहे थे, रात्रि का समय था और अचानक ट्रेन रुकी, हमने बाहर देखा, आँख खुली, पूरा उजाला था, एकदम से संकल्प आया ये तो दिन हो गया और हमारा अमृत वेला मिस हो गया, एकदम जैसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, हमने क्या गलत खाया था रात में, या कौन से गलत संकल्पों के साथ सोए थे, इतना जैसे मन भारी हो गया कि अमृत वेला मिस हो गया, दिन निकल आ गया है, हम ट्रेन में है, ट्रेन में है तो क्या हो गया, ये कोई कारण तो नहीं है, एक्सक्यूज तो नहीं है अमृत वेला मिस करने का। और उसी अवस्था में बैठे थे जैसे आंसू आ रहे थे और ट्रेन चालू हुई तो पता चला वो स्टेशन था। अभी तो आँख खोला देखा डेढ़, इट इज 1:30। बाबा धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन समय की सीमा है। प्रश्न तो बहुत सारे और भाई बहनों के थे जो पूछते रहते हैं, उनका ही संकलन किया था। मैं समझता हूँ ये इस विषय के ऊपर सबको प्रकाश डल गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आगे भी हमारे प्रोग्राम और शाम का निर्धारित है। तो आप दोनों का एक बार पुनः, दोनों भाई जी का, आप सबके तरफ से, बाप दादा की तरफ से अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, बहुत 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 दिल से आप दोनों का शुक्रिया। अभी हम सभी लास्ट में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।